وجعلنا وإياك من الطالبين لثاره إن شاء الله مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلوات الله وسلامه عليه آني صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله والشكر لله وباسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله وأولاد رسول الله، ولعنة الدائم على أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله من آن إلى قيام يوم لقاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، لا معبود سواك يا ربي. وقالت عليها السلام: اللهم تقبل منا هذا القربان بقبولك يا ربي. حضرني سيد الشهداء عليه السلام، خاندان عصمت و طہارت کے عزاداری، ماتمداری، غم و اندوہ کے یہ ایام ہیں جو اول محرم سے شروع ہوئے اور آج ہم 40واں یا 40 میں پہنچ گئے، اور اس پوری مدت کے اندر بظاہر 40 دن ہیں لیکن عصمت و طہارت کے ان ستاروں نے اور عظیم ہستیوں نے جس طرح کے حالات کا ان ایام میں سامنا کیا، اور کیسے اپنے نانا کے دین کو اور خدا کے پیغام کو بچایا، محفوظ کیا، ان میں سے ہر ایک لمحہ اپنے اندر صدیوں کی داستانیں رکھتا ہے. ایک شاعر کے کچھ اشعار ہیں جو کہتا ہے: آواز یا حسین کا شور، آواز یا حسین کا شور پھر نے نوا میں ہے، آواز یا حسین کا شور پھر نے نوا میں ہے، شبیر تیرے خون کی خوشبو ہوا میں ہے، شبیر تیرے خون کی خوشبو ہوا میں ہے، چہلم کی شان سے ہے پریشان یزید وقت، ہر دور میں رہا ہے، اسی وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یزیدیوں کا یہی حال ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں دنیا کی جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے والی جو مشنریز ہیں مشہور و معروف، میں مختلف زبانوں میں ان کی رپورٹس پڑھ رہا تھا. ہماری زبان میں تو قدرے اچھی رپورٹ، کیونکہ رپورٹر جو ہے ایک جو ہے شیعہ خاتون تھی، لیکن دیگر زبانوں میں جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے اس وقت اربعین امام عالی مقام کے حوالے سے، آپ دیکھیں کوشش کی جاتی ہے کہ اربعین کو ایک غیر روحانی طریقے سے پیش کرانے کی کوشش کیا جائے، اور اس میں ایسی باتیں کی جائیں، اتنا سارا کھانا ہے کیوں ضائع ہوتا ہے، دنیا کے ملکوں میں بھوک ہے وغیرہ، ایک عجیب و غریب قسم کی فلسفی بیان کی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں، پاکستانی زائرین کو اربعین کے دن عراق جانے کی کیا ضرورت ہے، سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. درست ہے، سیلاب زدگان کی مدد ہونی چاہیے، ہم سب اپیل کر رہے ہیں، پورے انسان اپیل کرتے ہیں، پورے پاکستانی اوورسیز سب کر رہے ہیں، دنیا میں بھوک مٹانے کی کوشش ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کس چیز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں سات لوگوں کو زندہ رہنے کی بھی ضرورت ہے، حقیقی زندگی، میننگ فل لائف ہونا ضروری ہے. دنیا میں لوگوں کے اندر اعلیٰ انسانی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور کربلا اور اربعین کا اجتماع اور مجالس لوگوں کو کیا کرتی ہیں، انسان بناتی ہیں، لوگوں کو زندہ کرتی ہیں، چرتی پھرتی لاشوں سے حقیقی زندگی کی طرف لے آتی ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آیت ہے کہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان لانے والو. معلوم ہوا کہ یہ ایک تو ایمان لانے والے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ زندہ بھی ہیں. जिंदा है तभी तो ये सुन रहे हैं ना, इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू उस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल और ये रिसालत का जो सिलसिला है, नबुवत का जो सिलसिला है, ये अगर आपको पुकारे, आवाज दे, दावत दे किसी चीज के बारे में, इस्तजीबू जवाब दे देना। क्यों क्यों जवाब दे, बदले में क्या मिलेगा? इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इदा दआकुम, जब आपको आवाज दें, आपको कुछ इरशाद फरमाएं, जवाब दे देना। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि आप लोग जिंदा हो जाओ। जिंदों से खुदा मुखातब है कि तुम लोग जिंदा हो जाओ, कि हम तो जिंदा हैं, मेडिकली तौर पर, फिजिकली तौर पर हम जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन जारी है, दिमाग काम कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक भी नहीं हुआ है। लेकिन ये मेडिकल और फिजिकल जिंदगी है, हकीकी जिंदगी क्या है कि हमारे अंदर इंसानी सिफात मौजूद हो। तो अरबईन और आशुरा और ये मजालिस, ये मातम, ये गिरिया, ये मरसिया क्या करता है? हमें जिंदा करता है। तो जो लोग प्रोपगंडा करते हैं अरबईन के इज्तिमा को लेकर, आशुरा के इज्तिमा को लेकर, मजालिस को लेकर, नासमझी में कभी दुश्मन जो है दानस्तगी में ऐसी बातें करता है, तो हर दौर के यजीदियों की हेराफेरी वाली चाल हमेशा रहती है। इसीलिए शायर ने कहा, चहलुम की शान से है परेशान यजीद वक्त, चहलुम के शान से है परेशान यजीद वक्त, जैनब तेरी दुआ का असर करबला में है। आज भी जारी, आज भी ये तसलसल जारी है, कोई नहीं मिटा सकता है इसको। छठे इमाम ने, एक सहाबी आया, बिशर बशीर, दोनों क्योंकि तरीके से पढ़े जाते हैं, उनका नाम था। वो आया और उनसे जो है छठे इमाम ने, मुहर्रम के अय्याम थे, तो फरमाया, या बशीरु मन ज़ारा कब्र अल हुसैन अलैहि सलाम आरिफन बिहक्की कमन ज़ारा अल्लाहु फी अर्शिही। फरमाया, ए बशीर सुनो, जो करबला में जाकर नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज्यारत करता है, उस शख्स की मिसाल, उस जवार की मिसाल, उस जायर की मिसाल ऐसी है जैसे वो अर्श मुअल्ला में पहुंचा हो और उसने अल्लाह की ज्यारत की हो। मासूम के अल्फाज। फरमाया, आरिफन बिहक्की कमन जार अल्लाहु फी अर्शिही, जैसे कि वो अर्श में पहुंचा और अल्लाह की जियारत की। अब जाहिर है आज की मजलिस में तो मैं ज्यादा इसके गहराई में नहीं जाऊंगा, आप साहिबान फहम व फरासत हैं, इशारा करूंगा, आप समझते हैं, और तेजी से हम आज के कुछ चुनिंदा वाकयात की तरफ चले जाएंगे। देखें, कुरान मजीद में एक बहस है कि कभी आयात फरमाती हैं कि कुछ चीजें आपके लिए तजल्ली की तरह हैं, कुछ चीजें आपके लिए तजाफी की तरफ हैं। खूब, ये कुरानी इस्तलाहात हैं, तो तबरुकन मैंने इसी को, इसी इस्तलाह को हर एक को बहुत वजाहत करता हूं। तजल्ली तो वाजह है आपके लिए, रिफ्लेक्शन, मुनाकिस होना, इनकास करना, रिफ्लेक्ट करना, जैसे सूरज की शुआएं तजल्ली करती हैं, यहां पर जलवागर होती हैं ना, जलवानुमा होती हैं, जलवागर होती हैं, पहुंचती हैं आईने को लेके। अब आईने के ऊपर सूरज को लेते हैं, हम आगे मारते हैं, ये क्या है? तजल्ली करना है। सूरज आईने में जलवागर हो रहा है ना। थोड़ा सा आगे जाते हैं, कहते हैं किसी बच्चे को देखकर, यार इस बच्चे में तो इसके बाप का अक्स नजर आता है, ये अक्स वही अरबी में तजल्ली है, ये बच्चा अपने बाप पे गया है, क्या है? ये तजल्ली है। हजरत अली अकबर का अशबहन्ना सुबि रसूले, इमाम ने फरमाया, यानी खुल को, अखला को, किरदारो, किरदार हजरत जो है पैगंबर ग्रामी इस्लाम हजरत अली अकबर में जलवागर है, तजल्ली है। अच्छा, एक स्टेप आगे जाते हैं, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कादर, हमने कुरान मजीद को शब कदर में कंप्लीटली एक दफा नाजिल किया, कल्बे ताहिर मुतहर हुजूर पाक में। खूब, ये नुजूल नुजूल तजल्ली था या नुजूल तजाफी था। मतलब क्या है इन दोनों का? मतलब ये है, बारिश आसमान से नाजिल होती है, वो भी क्या है, वह अनजलना मिनल माई है, वहां भी अनजलना कहा है, यहां भी कुरान को भी कहा है अनजलना, दोनों अनजलना में फर्क है। एक तजल्ली है, एक तजाफी है। मतलब क्या आगा साहब? फिर तजल्ली फिर तजाफी। मिसालें देता हूं, वाजह हो जाएगा। साहेबान फहमो फरासत हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब फरमाया बारिश इन्ना अनजलना हो, इन्ना अनजलना अमिना समावया खुजबी हाँ बाता, इस तरह की जितनी आयतें हैं, ये नुजूल नुजूल तजाफी है। मतलब क्या? बारिश से, चले एक आसान मिसाल से जाते हैं, अगर मैं पांचवी मंजिल पे चढ़ जाऊं, उसकी छत पे चढ़कर एक जग पानी नीचे गिरा दूं, तो अब सवाल ये है, पानी नीचे बारिश की तरह, कतरों की तरह क्या पड़ेगा? नाजिल हो जाएगा, अरबी में उर्दू में बरस जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। सवाल ये है, मेरे जग में अब पानी है या नहीं है? नहीं है। पानी ऊपर से कट गया, नीचे आ गया। लेकिन अगर मेरे हाथ में एक रस्सी हो, उसका सिरा मेरे हाथ में हो, उस रस्सी को मैं नीचे फेंकूं, तो रस्सी भी नीचे नाजिल कर गई है, दरए निहाल ऊपर से भी मुत्तसिल है। यह है तजल्ली। जब फरमाया इन्ना अनजलना हु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान मजीद को शब कदर नाजिल किया, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से काट के नीचे फेंक दिया बारिश की तरह। ये नुजूल नुजूल है, बारिश नहीं है, बारिश की तरह नाजिल होना नहीं है, बल्कि इस तरह है कि ये हबल की तरह है, रस्सी की तरह है। एक सिरा आपके पास आया है, अयुहल मोमिनून अयुहल मुस्लिमों, कुरान को थाम कर चाहो तो अर्श पर पहुंच सकते हो, मलकूत में पहुंच सकते हो, क्योंकि एक सिरा मलकूत से वाबिस्ता है। इसी तरह ये जो नबुवत और इमामत और विलायत हैं, हमने भेजा है, लेकिन हमने बारिश की तरह इनको नहीं भेजा, बल्कि इनका नुजूल जो हुआ है जमीन के ऊपर रस्सी की तरह हुआ है, ये अभी भी वहां से मुत्तसिल है। रहते जमीन में आपके पास हिदायत के चराग बनकर आए हैं, कुरान नातिक बनकर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से रिश्ता खत्म हुआ है, वहां से ताल्लुक खत्म हुआ है, वहां से काट के इधर नहीं आए, वहां जुड़े हुए हैं। इनके हाथ थामोगे उधर पहुंचाएंगे, इनके हाथ पकड़ोगे अशरफ मखलूक के मकाम है, मेराज इंसानियत तक पहुंचाएंगे, है या नहीं है? समझ में आ गई बात? अच्छा समझ में, तो बस ज्यादा नहीं वो करता मैं, बस ये जो सिर्फ मंजार अल्लाह फी अर्शी, असल में उसकी एक हिस्से को बयान करना चाह रहे, थोड़ी सी आरिफाना बहस है जाहिर है, तो ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अब फरमाया कि जो सैयदुल शुहदा अलैहि सलाम की जियारत करे, आया है जिससे अल्लाह की, अल्लाह की जियारत तो नहीं हो सकती, आंखों से तो देखा नहीं। कल हमने बहस की, जुमे में भी शायद इशारा किया था, हजरत मूसा अल्लाह का नबी, नबीउल्लाह, कोहे तूर में 40 दिन जो है वहां रियाजत करते रहे, फरमाया अलम तरानी या मूसा, मूसा देख नहीं सकते हो, मैं आंखों से देखने वाली चीज नहीं हूं, जो फिफ्थ सेंस से ये देखना चाहते हो वो नहीं, हाँ मैं रूह से देखा जा सकता हूँ, मैं अंदरूनी बरजखी चश्म, जिसको कहते हैं चश्मे बरजखी, रूहानी से देख सकता हूँ। तो एक तो ये आ गई बात। दूसरी बात, यानी देखने से मुराद, ये जियारत से मुराद क्लियर हो गई, मसला मसल में ये चाह रहा हूँ, अर्श पर अल्लाह को देख सकते हैं, इसका मतलब आंखों से देखना छूने वाली बात नहीं हो रही, कोई और बात हो रही है, वो क्या हो रही है, किसी हद तक आपके लिए वाजे हो गया। अब चलते हैं कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत जियारतुल्लाह है, खुलासा ये है ना इस हदीस का, और भी हदीसें हैं, मैं एक हदीस मुझे जहन में आ गई, मैं नोट करके लेके आया, अल्लाह खालिक है, खालिकियत कहाँ तजल्ली करती है, रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी तखलीक में, को तो ये खालिक के कामिल व अकमल है, अल्लाह की खालिकियत इंतहा है ना, तखलीक की इंतहा होती है, वो खालिक कुल है, उससे बड़ा और कोई खालिक का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। हाँ तो अल्लाह की तखलीक की इंतहा कौन है, कहाँ है? तो इंसान अशरफ मखलूक है, इसलिए इंसान, ठीक है, ये सब कायनात अल्लाह की तखलीक है, इसमें जो मोस्ट सुपर तखलीक है अल्लाह की, क्रिएशन ऑफ गॉड है, वो हम इंसान है, अशरफ मखलूक। अच्छा, क्या हम इस सुपर क्रिएशन को पेश नजर रखकर उस खालिक की खालिकियत की सिफत या उसकी जो है तखलीक की इंतहा को महसूस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं? क्योंकि हम जो इंसान है, अशरफ मखलूक होने के बावजूद ना कामिल हैं ना अकमल हैं, ना इंसानी सिफात हम में बतौर तमाम है ना कमाल है, दोनों चीजें नहीं है। तो फिर हम मोस्ट सुपर क्रिएशन नहीं है। जमीन में ऐसा ही है, लेकिन इससे बड़ी कोई सुपर क्रिएशन खुदा की है। आपको ज्यादा जहमत नहीं देता, शॉर्ट करता हूं। ये जो अंबिया है, ये जो औलिया है, बाज उलिल अजम है, बाज की नबुवत महदूद है, बाज को बाज पर फजीलत दी कि कुरान ने कहा तिलकर रुसुल फद्दलना बादुहुम अला बाज वगैरह वगैरह वगैरह, ये इसके पीछे की कहानी क्या है? ठीक है, जाहिर तौर पर नबुवत का दायरा है, किताब का अता करना है, नई शरीयत को देना, पुरानी को मनसूख करना वगैरह वगैरह, ये सब अपनी जगह दुरुस्त। इससे हटकर भी कुछ है, क्योंकि ये हस्तियां अल्लाह सुबहानहू व तआला की खुदाई रिफ्लेक्ट करती है, एक तजल्ली करती है, दो जलवागर होती है, जलवानुमा होती है इन हस्तियों के अंदर बतौर कामिल व अकमल व अतम। लेकिन इनमें से हर हस्ती की, माफ करना, कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं होती कि हम कहें पूरी खुदाई जलवानुमा हुई है, पूरी खुदाई जलवागर हो चुकी है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए खातमुन नबीयीन वर रुसुल को भेजा, आलमीन की रहमत बनाकर एक आखिरी के तौर पर भेजा, फरमाया इन्नहू ला नबी बादी, इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब क्या? इस नबी की जात वाला में खुदा की तमाम सिफात बतौर कामिलो अकमलो अतम जलवागर हैं। लिहाजा गदीर में जो ऐलान हुआ उसकी एक जाहिरी शक्ल सूरत है, जो हम और आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि दीन कामिल हुआ, दीन अकमल हुआ। असल में उसके पीछे एक और मसला भी था, वो ये है कि हुजूर पाक ने फरमाया जिस तरह में तजल्लीये कामिलो अकमलो अतम में सिफात खुदा हूं, मेरे बाद ये अली तजल्लीये कामिलो अकमलो अतम में सिफात खुदा है, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे। अब सुने, खुदा की सिफात का जलवा नुमा जलवागर होने वाली हस्ती, यानी खुदा की खुदाई बतौर कामिलो अकमलो अतम सैयदुल शोहदा अलैहि सलाम में जलवागर हो रही है। तो इमाम ने फरमाया ठीक है, हम सारे मोहम्मद हैं, सारे नूरे वाहिद हैं, उसके बावजूद मकाम हुसैन हमारे दरमियान जरा मुख्तलिफ है। नजात की कश्ती है लेकिन वसी है, नजात की कश्ती हम सब हैं लेकिन हुसैन तेज रफ्तार नजात देने वाले हैं। कयामत में सबके कंट्रोल में बहेश्ते जन्नत है, हम सब शाफे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन जहन में रखो मकाम हुसैन हमारे दरमियान ऐसा है, सारे नबी उस पर रश्क करेंगे। वाजह हो गई बात? अब जो है बात दरअसल ये है कि जो करबला जाता है, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की जियारत करता है, वो दर हकीकत एक ऐसी, मुझे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, खतरात में गिरा हुआ हूं, क्योंकि मेटाफिजिक्स को फिजिक्स में लाकर लफ्जों में डाल के बयान करना आसान नहीं है। लिहाजा जो करबला जाता है, छठे इमाम फरमाते हैं, वो दर हकीकत उस हस्ती की जियारत कर रहा होता है जो खात आदम से खातम तक और 14 मासूमीन के दरमियान क्या है, वो हस्ती है जहां सिफात खुदा यानी खुदा की खुदाई तमाम मानों में पूरी तरह जलवागर है। सुन नारी बात माने सैयद अशरफ सलावत। दूसरे अल्फाज में हम सब तजल्लीए सिफात खुदा रखते हैं, सिफातुल्लाह की तजल्ली बतौर कामिल व अकमल। चाँ ये सूरज चांद सितारों में भी अल्लाह की सिफात है, हमारे पर भी अल्लाह की सिफात जलवागर हैं, क्योंकि हम मखलूक हैं, हर मखलूक के अंदर जलवागर हैं। ऐमे मासूमिन में बतौर कामिल व अकमल व अतम है। लेकिन अगर उसके दरमियान भी आप देखना चाहते हैं, छठे इमाम ने फरमाया देखें बात दरअसल ये है, हुसैन उस हस्ती का नाम है जहां पर खुदा की खुदाई पूरी तरह जलवागर होती है। लिहाजा हुसैन की जियारत करना ऐसा है अर्शुल्ला में अल्लाह सुबहान व तआला की जियारत करना। और पहलू भी हैं इसके, लेकिन मुख्तसर करते। लिहाजा अजीजों, चिमरे मलून को ये मालूम नहीं था कि उसके उस मनहूस खंजर तले किस हस्ती का गला, उसके नजिस कदम किस हस्ती के सीने ताहिर व अतहर में पड़े हुए थे। अभी फिर जियारत में मैंने मुसलसल में यार्ज कर रहा हूं, रिपीटेडली कर रहा हूं ताकि जहन में रहे। ये जियारत अरबईन फिर हमें सिखाती है इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों बर्दाश्त की उस मलऊन के नजिस कदमों को जो बोसगा है रसूलुल्लाह था, जो सीना बोसा लगाते थे अल्लाह के हबीब, जिस गले पे जिस सीने पर उस नजिस पांव को बर्दाश्त किया इमाम, क्यों इस हद तक गए कि 6 माह के बच्चे को भी कुर्बानी के लिए तैयार, कहा मेरा 6 माह का बच्चा हाजिर, इसलिए कि इमाम आली मकाम अल्लाह की सिफात का तजल्ली कामिल व अकमल है और बंदों को महबूब रखते हैं और नजात देना चाहते हैं। लियस्तनकिद अलइबाद का मिनल हैरती व दलालती व हैरत जहालती व दलाला, ये बुनियादी हदफ था। इसके लिए क्या किया, हजरत अली असगर का भी लहू पेश किया और मोहम्मद ने भी अपना लहू पेश किया, बच्चों ने लहू पेश किया, बुजुर्ग ने लहू पेश किया। इस मैदान के अंदर आका व गुलाम की तफरीक भी खत्म हो गई थी, काला और गोरे की तफरीक भी खत्म थी, बनी उमैया जिसको जिंदा करना चाहती थी कबीले ही तफरीक को, सैयद शोहदा अलैहि सलाम का गुलाम जनाब जोन जब शहीद हुआ, इमाम ने उसके जनाजे को भी उठा के गंज शहीदा में रखा, गुलाम और काला है कहकर किसी अलग जगह में नहीं रखा, हजरत अली अकबर के किनारे में रखा। हजरत अब्बास के कहा मेरे ऊपर जान कुर्बान की है, मेरे दीन के लिए खुदा के हुक्म के लिए जान कुर्बान किए, सारे शहीदों को मैं हुसैन बराबर मकाम देता हूं, इंद अल्लाह अपनी जगह है, लेकिन इमाम मासूम बेनवान इमाम मासूम गुलाम को ये मकाम मंजिलत अता करते हैं, किसी किस्म की यहां पर कोई चीज नहीं है। करबला में प्यास बर्दाश्त की तो असीरों के इस काफिले में 44 से 45 बच्चों का जिक्र आया है। अलामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 44 और 45 और 46 में वाकई करबला को बयान किया है, उसके अंदर फरमाते हैं 40 से 45 बच्चे और बच्चियां इस काफिले में थे, लेकिन ये काफिला जा रहा था तो 40 से 45 बच्चे थे, 4 से 5 हामिला औरतें थी जिनके पेट में बच्चे थे, और ये काफिला जब कैद से रहाई मिलकर वापस आ रहा था तो रिवायात बताती हैं 8 से ज्यादा बच्चे नहीं थे, खुदा जाने ये सारे बच्चे रास्ते में कहां कहां पर ये बच्चे शहीद हुए, कहां कहां पर हामिला औरतों के बच्चे सख्त हो गए, जिनमें से चंद के मजारात भी हमारे पास मौजूद हैं। तारीख ने अपने सीने में इन सब चीजों को दफन कर दिया। कल अर्ज किया अजीज दो जिंदा ने शाम में बीबियां बैठी हुई हैं, पहले तबरुकात आते हैं, उसके बाद या के बाद दीगर अजीजों के सरों की वापसी होती है। हसब इख्तलाफ रिवायात में मशहूर को लेकर चलूंगा और अलामा मजलिसी और बिहारुल अनवार की रिवायात को लेकर चलूंगा। रहाई का वक्त आया तो आम तौर पर कैदियों को जब रहाई की खबर देते हैं ना तो कैदी खुशी मना के एक दूसरे से गले लगते हैं, दुनिया में रविश ये है, लेकिन यहाँ सूरत हाल जिंदान शाम में एक अजीब सूरत हाल है। जो ही रहाई की खबर मिलती है बीवियां एक दूसरे के गले लग के रोती हैं और इतने में सब अपने आप को कब्र सकीना के ऊपर गिराती है। एक खातून से यह रिवायत अलामा मजलिसी कोट करता है, मैंने अली की बेटी को कभी इस तरह गिरिया करते नहीं देखा जिस तरह बेनो गिरिया कर रही थी जब उसने अपने आप को हुसैन की यतीमा बेटी की कब्र के ऊपर जब हुसैन की यतीमा बेटी की कब्र के ऊपर अपने आप को गिरा रही थी। रिवायात में है इमाम ने फरमाया सारे निकले अब आगे बढ़े, अमारियां तैयार है बाहर, अब दुश्मन के होश ठिकाने आए हैं। बुजदिल दुश्मन की समझ में आया कैदियों को ज्यादा देर कैद रखना उसके लिए मुनासिब नहीं, लिहाजा आजादी का हुक्म आया तो अमारियां भी तैयार की गई, आजादी का हुक्म आया तो घोड़े और ऊंट भी तैयार हुए। इमाम ने फरमाया
सब बाहर निकले जिंदान को छोड़े। फिर वो बीवी रिवायत करती है बिहार अनवान के अंदर, मैंने अली की बेटी को देखा वो जिंदान के दरवाजे से बाहर आई, फिर तड़प के पलट के वापस चली गई। फिर बाहर आ गई, फिर तड़प के पलट के वापस चली गई। कान्हू यू लगता है कि हरमला कह रहा था मैदान में आशुरा के दिन, दबाली असगर के लिए सशोभा तीर अपने कमान में डालकर उठाता था, निशाना लेता था और फिर हाथ झटक के नीचे गिरा देता था। 3 बार जब ऐसा हुआ तो उसके कमांडर ने कहा, और मला तू बड़ा माहिर शिकारी है, तेरे तीर से कभी शिकार बचा नहीं, आज तेरे हाथ कांपने लगे हैं। कहा, नहीं अमीर बात ये नहीं है, मैं जब भी इस मासूम के गले का निशाना लगाता हूँ खैबगा का एक पर्दा उठता है। एक बीबी बेचैन है, यहाँ ज़ैनब मुस्तर है, ये जुलाब नवा में पढ़ते हैं ज़ैनब मुस्तर, इस्तरार ज़ैनब अजीब है, हुसैन की यतीमा की कब्र को छोड़कर जा नहीं पा रही है। ठीक है हजरत सकीना शहीद हो गई थी, लेकिन बलाखिरा सारी हजारा कबर के पास तो थी ना, उसी कबर के किनारे तो सोती थी। अब छोड़कर यह को तनहा वो भी दुश्मन के दरगे में, दुश्मन के शहर में, यजीदियों के पास छोड़कर बीवी को जाना पड़ रहा है। रिवायत कहती है मैंने तीसरी बार देखा अली की बेटी जिंदान के दरवाजे से बाहर आई, 2 कदम लिए हजरत भरी निगाहों से देखा, वापस लौट गई। इमाम ने आवाज दी, पुत्री अम्मा आ जाइए, सब आपके मुंतजिर हैं। फूफी अम्मा अल्लाह के हवाले कीजिए, अल्लाह वो हाफिज है, अब के बार गई है, कबर को अपनी आगोश में लिया है। कहने लगी बेटा ज़ैना, कहने लगी बेटा सकीना, तेरी बुबी तुझसे वादा करती है लौट के दे आओगी। अभी लोग समझ में आ रहा है शाम में बीबी का मजार क्यों है। वाकई करबला के बाद बीबी 1 से 1.5 साल जिंदा रही है, वापस लौट के शाम में इसीलिए आ गई। अभी लोग मुख्तसर करता हूँ, इधर चेहलुम के दिन जनाब जाबिर अल्लाह के रसूल के एक इंतहाई बावफा मुखलिस सहाबी, जिन्होंने बचपन में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अपनी गोद में उठाने, उन्हें प्यार करने का की सआदत पाई थी, नाबीना हो चुके थे, उम्र रसीदा थे, आंखें जो है देख नहीं पा रही थी। पहुंचते हैं, जियारत करते हैं, नहरे फुरात से गुसल करते हैं, अपने बदन को खुशबू लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बावकार अंदाज से कब्र सय्यिदुश्शोहदा की तरफ पढ़ते हैं। गुलाम उत्फिया या अत्फिया ने रहनुमाई की, कब्र के पास पहुंचे, अपने आप को कब्र पे गिराया और उसके बाद कहने लगे हैं, सलाम अलैक या रसूलल्लाह हबीबी हुसैन अलैक मिन्नी सलाम। फिर गिरिया करने लगे, हबीबी ला युजीबु हबीबा, ओ मेरे महबूब हुसैन मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं। कह रहे आ तू कैसे जवाब दे, शिवरे मलहूम दे तेरे गले में लंदन। अरे बिहार उल अनवार में जो रिवायत है उस रिवायत के मुताबिक, बिहार उल अनवार की रिवायत के मुताबिक जनाब जाबिर कशी के आलम में चले गए, या जो है बेहोश हो गए, लेकिन आलम ख्वाब में देखा सय्यिदुश्शोहदा अलैहिस्सलाम को, तड़प गए, कहा यब्ने रसूलल्लाह माज़ा बिका यब्ने रसूल, कह रहे आपके साथ ऐ रसूल के फर्जंदी आपके साथ क्या किया गया। इमाम जवाब देते हैं, اور پھر جلال کے ساتھ کہتے ہیں جابر میری قبر سے دور چلا جا. علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ خواب میں جابر نے دیکھا کہ امام فرماتے ہیں جابر میری قبر سے دور چلا جا, فاصلہ اختیار کر. جابر پریشان ہوئے, کہنے لگے فرزند رسول مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے, میں نے کوئی غلطی کی ہے, میں تو آپ کے چہلوں میں مدینے سے اندھی آنکھوں کے ساتھ آیا ہوں. کہا جابر بات یہ نہیں ہے, تم نے کوئی گستاخی نہیں, ہاں گناہ بختی کر رہی تھا. کہا وہ دیکھو میری بہن چین آ رہی ہے, میری قبر سے فاصلہ لے لو. جابر کو ہوش آیا, اس پیر سے کہا ذرا یہ تو بتا کیا کہیں پر کوئی آ رہا ہے. کہنے لگے جابر وہ دور مجھے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہنے مجھے بتا دو یہ قافلہ کون ہے, کس قسم کے لوگ ہیں؟ بے خدا جابر مجھے کچھ اماریاں نظر آ رہی ہیں. ہاں اماریاں نظر آ رہی ہیں, مطلب عورتیں بھی ہیں. کہنے لگے ان کے ساتھ کچھ جھنڈے بھی ہیں, علم بھی ہیں. کہا کس قسم کے علم ہیں, کس قسم کے؟ بے خدا کچھ کالے اور سیاہ علم نظر آ رہے ہیں. جو یہ جابر نے یہ سننا تھا, اس دوران لطفیہ نے ایک اور بات بھی کہی, بے خدا مجھے ان کے دائیں طرف کالا علم نظر آتا ہے, بائیں طرف سرخ علم نظر آتا ہے. جو ہی یہ سننا تھا جابر نے کہا وقت وصل الینا اسیرات والغرباء, آل رسول کے اسیر پہنچ گئے, زینب کبریٰ پہنچ گئی, بیمار کربلا لوٹ آ رہے, امام باقر آ رہے. عزادارن امام مظلوم, کل سے آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں, بس میں صرف چند نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو جو قافلہ نزدیک آتا گیا, ایک بے چینی و بے تابی ہے, بیار الانوار میں لکھا ہے بی بیاں اماری کے اندر رہ نہیں پا رہی ہے. مقتل کے قریب پہنچے, بیویوں نے کہا اٹھو کو روکو, اماریوں سے نکل آئی قبروں کی طرف دوڑ دے لگی.
وہ دیکھو پانی